ప్రక్షాళిత సకల భూతల కలంకా మనోపాసిత కీర్తా సరస్వతీ హరతు దురితం అజ్ఞాన తిమ్రాంధానాన్ జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. పరం గురుభ్యో నమః. పరం పరాచార్య గురుభ్యో నమః. సకల కలుష్ విధ్వంసకం ధర్మసంగం సకల కలుష్ విధ్వంసకం భవ్యజీవమన ప్రతిబోధకారకమిదం శాస్త్రం శ్రీ తత్వార్థ సూత్రవర్ణాన్ మోక్ష శాస్త్రనామదేన్ అస్మూల గ్రంథకరతారాశి సర్వజ్ఞదేవాస్తదుత్తరగ్రంథకరతారాశి గణధరదేవా ప్రతిగణధరదేవాస్ తేషాం వచనానుసారమాసాద్య శ్రీమద్ మునా స్వామీ ఆచార్య దేవైర్ విరచితం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణీ మంగళం కుందకుందాద్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకల్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం. మోక్షమార్గస్య నేతారం భేతారం కర్మ భూవ్రతాం జ్ఞాతారం విశ్వతత్వానాం వందే తద్గుణలబ్ధయే. మహావీర్ భగవాన్ కీ, ఉమా స్వామి ఆచార్య మహారాజ్ కీ, ఆచార్య గురువర్ విద్యాసాగర్ ముని మహారాజ్ కీ, आज अपन जीव तत्व की प्ररूपना करने वाला चौथा अध्याय पढ़ते हैं. चौथे अध्याय में चार गतियों में से जो देव गति है उसमें विद्यमान देवों का वर्णन किया गया है. जो अपन सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करते हैं, ये देव उस सच्चे देव में शामिल नहीं है. ये देव जाति के देव नाम कर्म, गति नाम कर्म के उदय से ये अपने संसार का ही अनुभव करते हैं. दिव धातु से देव शब्द बना हुआ है. दिव धातु प्रकाशमान या चमकदार होने के अर्थ में है. सो इनका वैक्रियक शरीर जो अत्यंत चमकदार होता है, और दिव धातु पीड़ा करने के अर्थ में भी है. सो निरंतर ये भोगों को भोग में लगे रहते हैं और नाना प्रकार की विक्रिया के द्वारा पीड़ा करते रहते, जैसे कि बच्चे खेल कूद में लगे रहते, इसी तरह ये भी पीड़ा में लगे रहते हैं. इसलिए इनको देव कहते हैं. ये चार प्रकार के हैं. हालांकि देवलोक पर सहसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमें इन दो आंखों से ना देवलोक दिखता है ना देवलोक में विद्यमान देव दिखते हैं. उसका कारण हमारे अपने ज्ञान की अल्पता है. जो अवधि ज्ञानी मरे परे वाणी और केवल ज्ञान से संपन्न है, वे तो नाथ जैसे मनुष्य और तिर्यंचों में शरीर के द्वारा ही काम सेवन किया जाता है, ऐसे ही पहले दूसरे स्वर और भवनवासी यंत्र ज्योतिषी ये तीन देव, इनमें भी इसी प्रकार प्रविचार या काम सेवन किया जाता है. लेकिन ऊंचे देव जो हैं उनमें तो स्पर्श मात्र से या रूप देख करके या शब्द सुन करके या मन ही मन विचार करने मात्र से कामना तृप्त हो जाती है, और उनके लिए इस प्रकार से काम सेवन आचार्यों ने उल्लेख किया है. लेकिन जो स्वर्गों से ऊपर के देव हैं वे सब परे अपविचारा, वे हमिंद्र हैं, वहां पर कल्पना ही नहीं की गई है, देवियां इत्यादि वहां होती नहीं है, तो वहां पर सब काम सेवन से रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि ब्रह्मचारी है, हाँ, उनके लिए उस तरह का भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। है तो उनके भीतर वेद, लेकिन उस वेद के उदय को वो बाहर में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको अप्रविचार कह दिया। देखो, प्रविचार से मतलब यहां पर सिर्फ इस पर इंद्रिय के सुख को न लियो, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और सोत्र पांचों इंद्रियों के विषयों के सेवन करने का ढंग जैसे मनुष्योत्तरियों का है, वैसे ही दूसरे स्वर्ग तक के समस्त देवों का है। उसके ऊपर तो वो सिर्फ स्पर्श रूप शब्द और मन के द्वारा ही काम सेवन या पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं। यहां पर विषय सुख की अपेक्षा से दिया गया है, भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दीप दीप कुमार, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दीप कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी देवों के नाम हैं। इन सब के साथ में कुमार शब्द जोड़ा गया है, जैसे कि कुमार अवस्था में कोई रहता है यहां पर मनुष्य, ऐसे ही वहां वैसी ही कुमार अवस्था में जीवन पर्यंत तक वृद्धावस्था को वो प्राप्त नहीं होते, इस वजह से उनके साथ कुमार शब्द का उपयोग कर दिया है। वो वेशभूषा आनंद और जो सब भाव युवा अवस्था में होते हैं वैसा ही उनका जीवन पर्यंत रहता है। इसमें से जो असुर कुमार जाति के देव हैं उनके तो भवन जो है रत्न प्रवाह भूमि के जो पंक भाग है उसमें विद्यमान है, और 9 प्रकार के जो शेष बचे देव हैं उन सब के भवन खर भाग में ऊपर और नीचे 1000 योजन छोड़ दो ऊपर और नीचे और बीच के भाग में वहां पर विद्यमान है। व्यंतराह किन्नर कुंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूस पिचाचा, ये व्यंतर कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो मध्य लोक में सर्वत्र विचरण करने की क्षमता वाले हैं वो सब व्यंतर देव हैं, उनके 8 वेद हैं। किन्नर जाति के, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व जाति के, यक्ष जाति के, राक्षस जाति के, भूत जाति के और पिशाच जातियां हैं जे उनकी, लेकिन वो समचतुरस्य संस्थान वाले हैं, अत्यंत सुंदर शरीर को धारण करते हैं। ऐसे न समझना कि जैसे अपने यहां पर भूत आ गया, ऐसे पांव पीछे हैं और हवा से दिखा रही, सफेद सफेद बना दो चित्र में, ऐसा जो भूत का बना देते हैं अपन घोष कहते जिसको है विदेश में, तो वैसा स्वरूप इनका नहीं है भैया, वो तो उनकी विक्रिया है, वो जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, बाकी तो उनका जो मूल शरीर है अत्यंत सुंदरता को प्राप्त होता है, चाहे वो व्यंतर जाति के भी क्यों ना हो। इस तरह भवनवासी और व्यंतर की चर्चा कर ली, अब ज्योतिषी देवों के बारे में थोड़े थोड़े में 2-3 सूत्रों में आचार्य महाराज परिचय करा रहे हैं। डिटेल में जिसको पढ़ना हो तो वो फिर ऊंचे ग्रंथों से और पढ़े है। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च बहु तारकाश्च, कहा था कि 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं, वो कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये 5 भेद ज्योतिषी देवों के हैं। ज्योतिषी देव स्वभाव से ही प्रकाशमान होते हैं, इसलिए उनको ज्योतिषी देव कहते हैं। अपने यहां पर बहुत प्रकार से इनका वर्णन किया हुआ है। देखो, 790 योजन से लेकर के और पूरे 110 योजन की पेटी में, यानी 900 योजन तक, पृथ्वी से 700 योजन ऊपर और 900 योजन के एरिया में, 110 योजन में ये अपने
जो इनकी कक्षाएं हैं उनमें निरंतर मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए भ्रमण करते रहते हैं, जिसमें 790 योजन पर तो तारे हैं और सूर्य जो है 800 योजन पर विद्यमान है, 880 योजन पर चंद्रमा का विमान है और नक्षत्रों के सब विमान 884 योजन पर हैं, जिसमें जो बुध है वो 888 पर, शुक्र 891 पर, तीन तीन बढ़ते चले जाते हैं, 894 पर बृहस्पति, 97 पर मंगल और 900 योजन पर सबसे ऊपर शनि का विमान स्थित है। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने इन सब की स्थिति उस 790 से 900 के बीच में कहां कहां है, कितनी ऊंचाई पर है, यह भी वर्णन कर दिया है। और ढाई द्वीप में सूर्य कितने हैं तो 132 हैं, चंद्रमा भी 132 हैं। चंद्रमा को इंद्र माना है, सूर्य तो प्रतिइंद्र है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोणा कोणी तारे होते हैं। आज वर्तमान में कह रहे हैं वैज्ञानिक कि ऐसी जैसी आकाश गंगाएं अनंत हैं, जैसी अपन को दिखाई पड़ती हैं, तो इसी तरह से एक चंद्रमा का परिवार इतना बड़ा है तो कितने चंद्रमा हैं पूरे ढाई द्वीप में, 132। उनमें एक एक सूर्य होने से 132 सूर्य हो गए और 11,616 ग्रह हैं और 3696 नक्षत्र हैं। तारों की संख्या तो हमने निकाली नहीं भैया, अब गुड़ जो घटाना आप ही कर लेना, 66,975 एक में है तो सबरे 132 में कितनी हुई है, सो आपके पास कैलकुलेटर है, सो आप इनसे घटावड़ा लेना जैसा भी करना। मेरी प्रदक्षिणा नित्य गतियों विलोके, ये जो ढाई द्वीप में ही इन ज्योतिषी विमानों का संचार होता है, ये सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा नित्य ही निरंतर ही करते रहते हैं। तत्क्रतः काल विभागा, इस वजह से ही अपने यहां पर दिन रात का भेद देखने में आता है। लेकिन बाहर अवस्थिता, ढाई द्वीप के बाहर इन ज्योतिषी विमानों का संचार नहीं होता, वहां पर ये स्थिर ही रहते हैं, वहां पर ये मेरु की प्रदक्षिणा नहीं करते हैं। इस तरह से ज्योतिषी मंडल की चर्चा कर ली। अपन विचार करें कि जम्बूद्वीप के लिए दो सूर्य और दो चंद्रमा हैं। आज वर्तमान में विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लगा है कि दूसरा चंद्रमा भी और दूसरा सूर्य भी विद्यमान है, जो कि अपन को स्पष्ट दिखाई भले ही नहीं पड़ता, पर उसकी मौजूदगी का एहसास खगोल शास्त्री जो है वो स्पष्ट रूप से कर पा रहे हैं यंत्रों के द्वारा। अपन देखें अपने जैन दर्शन के अनुसार सुमेरु पर्वत विदेह क्षेत्र के मध्य में है और वहां पर निषद पर्वत जो भरत क्षेत्र की तरफ है, दूसरी तरफ ऐरावत की तरफ नील पर्वत है, सो निषद पर्वत की तरफ जब एक सूर्य विद्यमान होता है जिसकी वजह से पूरे भरत क्षेत्र में लाइट होती है, तब इसी तरह से नील पर्वत के एक सिरे पर ऐरावत क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए दूसरा सूर्य काम करता है। और जब ऐरावत क्षेत्र में और भरत क्षेत्र में दोनों जगह सूर्य का भ्रमण नहीं होता है, जब विदेह क्षेत्र में ही सूर्य भ्रमण करता है, तो दोनों सूर्य मिलकर के पूरे विदेह को एनलाइटेड करते हैं, प्रकाशित करते हैं। बाकी तो वे उस समय अंधकार रहता विदेह क्षेत्र में जब अपने यहां पर, और ऐरावत क्षेत्र में दक्षिण की तरफ, और मैं दक्षिण बोल रहा था कि उत्तर बोल रहा था, दक्षिण की तरफ ना है? हाँ, दक्षिण में तो भरत क्षेत्र है, उत्तर की तरफ है विदेश क्षेत्र के, तो ऐरावत क्षेत्र में जब और भरत क्षेत्र में प्रकाश रहता है, तब पूरे विदेश क्षेत्र में प्रकाश नहीं रहता, रात्रि रहती है, ऐसा अपने यहां पर वर्णन मिलता है। भवनवासी देवों के जो भवन अपन ने चर्चा करी कि असुर जाति के देवों के भवन
बने रहते हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, सो जो पंख भाग में बने रहते हैं स्थित हैं उन्हें भवन कहते हैं। लेकिन भवनवासी देवों के जो भवनपुर हैं वो द्वीप समुद्रों में भी बने रहते हैं और तालाब और वृक्ष और पर्वत के ऊपर उनके आवास होते हैं। इस प्रकार से भवन, भवनपुर और आवास, ऐसे तीन भेद भवनवासी देवों के किए हुए गए, इनके स्थानों के किए गए हैं। वहां पर भवनवासी देवों में भवनों की संख्या बहुत अधिक है, ये तो सिर्फ उनके विमानों की चर्चा की गई। पहले में 64, दूसरे में 84, तीसरे में 72, चौथे में 96 और सब बाकी शेष बचे सो 76 लाख भवन हैं। इस तरह से कुल 7,72,00,000 भवन हैं। उतने ही भवनों में जिनालय विद्यमान हैं। मुख्य बात समझने की ये है, इसलिए अपन 7,72,00,000 जो जिनालय हैं भवनवासी संबंधी, उन सबको अपन परोक्ष में ही प्रणाम करते हैं। और व्यंतरों के जो स्थान हैं वो तो असंख्यात हैं और उनके सब स्थानों में भी असंख्यात जिनालय विद्यमान हैं। और जो स्थित विमान जो होते हैं वो अर्ध गोलाकार होते, जैसे अपन संतरा बनाओ, नींबू बनाओ तो पूरा आधा आधा भाग कर दिया, तो जैसे एक तरफ तो बिल्कुल फ्लैट और दूसरी तरफ गोलाकार, इस तरह की जैसे आकृति बनती है, ऐसी ही ज्योतिषी विमानों की आकृति बनती है। इस प्रकार से ये जो अपन सूर्य के विमान है, जो जिनालय है उनकी वंदना का कहने लगते हैं, सो अपन को विचार करना चाहिए कि सूर्य के विमान में है तो जिनालय, लेकिन अपने को दिखाई थोड़ी पड़ रहे हैं, जो कि अपन उनको नमस्कार यहां से परोक्ष में सूर्य को प्रणाम करें अपन। हालांकि सूर्य को प्रणाम नहीं करते, कई लोग तर्क देते कि हम तो उस विमान में जो विद्यमान आपके जिनालय है उनको प्रणाम कर रहे हैं। भले ही भी जिनालय में दर्शन करवे नहीं आए लेकिन उसको दर्शन करेंगे। सो देखो भाई, ये तो अपनी अज्ञानता ही है। चक्रवर्ती की दृष्टि 47,263 सही, 7/20 योजन इतनी होती 5 साल में एक बार मकर संक्रांति के समय, तब वो अपने भवन के ऊपरी भाग में खड़े होकर के और जिनालय में विराजमान जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर पाता है। अपन को इतनी दूर देखने की आंखों में क्षमता ही नहीं है, इसलिए अपन इस तरह का मिथ्या व्यवहार करते हो तो उसको अपने ज्ञान से जीतने की कोशिश करें कि भैया सूर्य को और सूर्य में स्थित जो जिनालय है उनको प्रणाम करने का तो मेरा अज्ञान भाव धीरे धीरे मुझे ही घटाना पड़ेगा। साक्षात जिनालय जो अपन ने मनुष्य के लिए कृत्रिम बनाए हैं उनके ही अपन दर्शन कर सकते हैं। सूर्य में तो जो विमान में जिनालय है वो सब अकृत्रिम जिनालय है, मनुष्य उनका तो दर्शन आसानी से कर ही नहीं सकता, ऐसा विचार अपन को। इस तरह से तीन प्रकार के देवों की निकायों की चर्चा हो गई। अब वैमानिक देवों की चर्चा करके वैमानिका एक सूत्र ही बना दिया कि चौथे निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं। वैमानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विमानों में रहते हैं, इसलिए उनको वैमानिक कहते हैं। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, अपन ने पहले समझा था कि जो वैमानिक देव हैं उनके दो भेद हैं, एक कल्पवासी और एक कल्पातीत। जहां पर इंद्र सामानिक इत्यादि 10 भेदों की कल्पना की गई है वे सब कल्पवासी देव कहलाएंगे, और जहां पर ये कल्पना नहीं है सभी अहमिंद्र हैं वहां पर ये सब कल्पोत्पन्न या कल्पातीत ऐसे कहलाते।
जो वैमानिक देहों के विमान हैं वे ऊपर ऊपर स्थित हैं। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म उत्तर लांतो का पिश्च शुक्रमा शुक्र सतार सहस्रारे स्वामत वारणाच्युतियो नवसु गौवे केशु जय वै जयंत जयंता अपराजितेशु सर्वहर सिद्धं च। इस प्रकार से पूरे स्वर्ग लोक के कैसे विमानों के नाम हैं उस सब की आचार्य भगवंतों ने सूत्र में चर्चा कर दी। दो विमान सौधर्म और ईशान ये दोनों एक ही ऊंचाई पर स्थित हैं, समान ही स्थित हैं। तो सौधर्म ईशान, फिर उसके ऊपर सानक कुमार महेंद्र, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिस्त शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत, ऐसे जी 16 स्वर्ग तो इस तरह से दो दो करके विद्यमान हो गए। उसके बाद जाकर के जैसे अपनी ये ग्रीवा है, हैं, सो ऐसे ही अधो गैवेक, मध्य गैवेक और ऊर्ध गैवेक, ऐसे तीन तीन यानी 9 गैवेक ग्रीवा के समान ही इसमें स्थित हैं। और उसके बाद 9 अनुदिश जैसे अपनी दंत पंक्ति है, ठीक वैसे ही वहां पर 9 अनुदिश विद्यमान है और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान है जो कि एक सेंटर में है और 4 दिशाओं में 4 हैं। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था की गई है। जैसे अपने इसमें छाती में सीने में दोनों तरफ हड्डियां होती हैं जिसको तंपसली कहते हैं, उनको देखो अपन ऐसे हाथ से एक यहां पर है एक यहां पर, जैसे यहां पर है वैसे यहां पर। तो इसी प्रकार से सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ठीक इसी तरह से पूरा लोक वास्तव में अपने ही शरीर को प्रदर्शित करता है। हमारे शरीर के में ही पूरा लोक अपन कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार अधोलोक तो नाभि के ऊपर का भाग और नाभि तो मध्यलोक है और नाभि से नीचे अपने पैरों तक का जो भाग है उसकी कल्पना ठीक वैसी ही अधोलोक के समान की गई है। इन दोनों की स्थिति क्या होती है? स्थिति प्रभाव सुख दुति लेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो भिका परि, और फिर उसके बाद गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, ऐसे दो सूत्रों में अलग अलग उनकी स्थिति कह दी। स्थिति का अर्थ है कि ऊपर ऊपर के देवों की आयु बढ़ती चली जाती है, उनका काल वहां जीवन बिताने का अधिक है, उनकी स्थिति अधिक है, उनका प्रभाव भी ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाता है। वैमानिक देवों में शाप और अनुग्रह करने की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, शाप देने की और अनुग्रह करने की। सो भैया दूसरे को अभिशाप देना तब संभव है जब उसके पाप का उदय हो गए, और दूसरे का उपकार तब हो सकता है जब उसका पुण्य का उदय हो गए। सो जी तो सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि वो अपने प्रभाव से हमारा भला बुरा कुछ कर सकते हैं। हमारे भले बुरे के लिए हमारे भीतर स्वयं अंतरंग में जो कर्म विद्यमान है साता साता, उसके द्वारा भी भला बुरा होता, वे तो सिर्फ उसमें निमित्त बनते हैं, ऐसा उनका प्रभाव है। और सुख उनके पांचों इंद्री और मन के सुख निरंतर ऊपर ऊपर की देवों में बढ़ते चले जाते हैं। द्युति, द्युति का मतलब लश्चर या उनकी चमक, तो उनकी जो आभूषण और वस्त्र इत्यादि धारण किए रहते हैं ऊपर ऊपर के देवों में उनकी चमक बढ़ती चली जाती है। यह भी देव रुद्धि भी आपस में एक दूसरे देवों को उनकी चमक को देख करके दूसरा देव विचार करता कि देखो हमसे ज्यादा ये ऊंचे हैं, क्यों है? इन्होंने पहले धर्म किया था जिसकी वजह से इनको इस प्रकार का चमकदार शरीर मिला है। इतना विचार करने मात्र से उसके भीतर वीतराग धर्म के प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, सात तत्वों के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, जिससे कि देव रुद्धि दर्शन भी उसके सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है। और लेशा की विशुद्धि
ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। पीत पद्म और शुक्ल लेश्या क्रमशः विशुद्ध होकर के बढ़ती चली जाती है। इंद्रिय के विषयों की सामर्थ्य वहां वह भी बढ़ती चली जाती है। अधिक अधिक मात्रा में इंद्रिय के विषय वहां पर उपलब्ध होते हैं। अवधिज्ञान का विषय भी उनका बढ़ जाता है। क्रम क्रम से जैसे ऊंचे देव होते चले जाते हैं वैसे अवधिज्ञान भी उनका अधिक हो जाता है। आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान को आना जाना कमती हो जाता है। बाकी सब चीजें तो बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन गति शरीर परिग्रहाभिमान तो होना, ये चार बातें उनमें कमती होती चली जाती हैं। देखो बड़ा व्यक्ति हो गए, छोटे बच्चे तो 15 दफे यहां से वहां दौड़ के आ जाएंगे, लेकिन बड़ा व्यक्ति शांति से एक जगह बैठे रहेगा। ऐसे ही जितने ऊंचे देव होंगे, जितने बड़े होंगे, उनके आने जाने की उतनी ही ललक कम होती चली जाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका आवागमन कम ही हो जाएगा और शरीर भी उनका छोटा होता चला जाता है। पहले दूसरे स्वर्ग में तो 7 हाथ के रहेंगे, तीसरे चौथे में फिर 6 हाथ, ये कम हो गया। ऐसे 5 में से 8वें में 1 कम हो जाता है, 5 हाथ रह जाते, 9 में से 12 में 4 हाथ, और फिर उसके बाद 13वें 14वें जो स्वर्ग है वहां पर 3.5 हाथ देवों की ऊंचाई रह जाती। 15वें स्वर्ग में 16वें में 3 हाथ, इस प्रकार से 16 स्वर्गों में 7 हाथ से लेकर के 3 हाथ तक कमती होती चली जाती। अधोग्रेवियक, मध्य ग्रेवियक और ऊर्ध ग्रेवियक में 2.5 हाथ, 2 हाथ और 1.5 हाथ की ऊंचाई रह जाती है। अंतरिक्ष विमान में भी 1.5 हाथ की ऊंचाई वाले ही देव रहते हैं। अंतर में तो सब 1 हाथ की ऊंचाई ही उनकी रहती देवों की। इस प्रकार से वे ऊंचाई की अपेक्षा से या कि देह शरीर की अपेक्षा से कमती ऊंचाई वाले ही होते चले जाते हैं, और परिग्रह की अपेक्षा से परिग्रह भी कम होता चला जाता। एक तरफ तो लिखा है कि देखो इंद्रिय के विषय अधिक क्षमता उनके अंदर बढ़ जाती है और इंद्रिय के विषय ही बहुत होते जाते हैं उनके पास, तो बड़ा ज्यादा मात्रा में इंद्रिय सुख के लिए परिग्रह इत्यादि रहना चाहिए। भैया अपने यहां पर जैसा अपन समझते हैं कि खूब ज्यादा पैसा इत्यादि है सो बड़े परिग्रही है, नहीं, अकेले सामग्री से परिग्रह नहीं मापा गया है, अपने भीतर जो आसक्ति है उससे परिग्रह है। सो तो ढेला नहीं है लेकिन दान बिना लोभन दुखी वो कृष्णावत भगवान। गरीब आदमी के पास में कुछ नहीं है लेकिन परिग्रही है, वो बहुत आकांक्षा है उसके भीतर, दिख तो कुछ भी नहीं रही। और बड़ा आदमी भी हो, संपत्तिवान हो, वैभववान हो, लेकिन अपनी संपत्ति को देने के लिए, दान करने के लिए उत्सुक है, त्याग करने के लिए उत्सुक है, ज्यादा आसक्ति उसके भीतर नहीं है, सिर्फ अपने उपयोग के लिए उसने संचित की है, तो वो अल्प परिग्रही हो सकता है। ऐसे ही देवों में भी परिग्रह अल्प होता जाता है। इसका आशय क्या है कि उनकी मूर्छा विषयों के प्रति कमती होती चली जाती है, अभिमान भी घटता चला जाता है। जितना जितना ऊंचे देवों में चले जाते हैं उतना उतना उनका मान सम्मान की भावना और अभिमान भी कम होता चला जाता है। देखो भैया जितने ऊंचे देव होंगे उतना कम अभिमान होगा, जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसको उतना ही कम अभिमान होगा, उतना ही वो विनयवान होगा। ये अपन वर्तमान में यहां भी देखते हैं। इस तरह से देवों के बारे में, वैमानिक देवों के बारे में चर्चा की। सब देवों के मानस आहार है, वे मन में कल्पना करते हैं, भूख लगी है, इच्छा हुई तो उनके कंठ में से अमृत झर जाता है। और एक सागर की अगर किसी देव की आयु है, कम से कम तो वो पहले स्वर्ग में तो उत्कृष्ट 2 सागर की है, सो एक सागर पीछे एक पक्ष में सांस लेंगे, सांस भी लेने के लिए उनको आकुलता नहीं है, बहुत कम ही अपना काम चलाने के लिए वो सांस का उपयोग करते। 15 दिन में एक बार
सांस लेंगे और अपन को तो अगर एक आदमी को सांस न मिले उसे सब रहे साथ बराबर हो जाए सब भरे रहे थे जंजूर जोर जोर के भर रहे थे सब जितनी दो सांसों को काम है और कुछ नहीं अगर सांस खत्म हो गई तो सब खत्म है। वहां पर 15 दिन में वो एक बार सांस लेते हैं। बड़ा विचित्र है कैसा लगता है पीत पद्म शुक्लेशा द्वि त्रिशेषेशु पीतलेशा पद्मलेशा और शुक्लेशा ये क्रम से पहले के 2 युगल फिर दूसरे 3 युगल और शेष सभी में होती है अर्थात 2 युगल यानी 4 स्वर्गों में तो पीतलेशा होगी आगे 3 युगल यानी 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 10वें तक जो है 3 युगल में होगी पद्मलेशा और 6 स्वर्गों में जाकर के 3 पेयर बनेंगे युगल तो 6 स्वर्ग हो गए इन 6 में पद्मलेशा ही रहेगी आगे सर्वार सिद्धि तक शुक्लेशा ही कही गई है। इस तरह से इनमें लेशाओं का उल्लेख किया गया है। लेशा का मतलब होता है अंतरंग में भाव दशा और वायु में उनका रंग। द्रव्य लेशा शरीर के रंग को बोलते हैं और भाव लेशा अंतरंग में होने वाले भान तक भी। जब तक कर्मों का आश्रय भले ही एरिया पथ आश्रय है जब तक होता रहता है तब तक लेशा विद्यमान रहती है। तो लेशा की वो परिभाषा व्यापक है कि जो लिप्ते इसी लेशा जो आत्मा को कर्म से लेपित करे अर्थात कर्म के बंध से युक्त करे उसे लेशा कहते हैं। भाव दशा को ही प्राग ग्रैवे के भ्या कल्पा ग्रैवेक से पहले पहले जो इंद्र सामान्य इत्यादि भेदों की कल्पना की है वो है ग्रैवेक के बाद और ग्रैवेक में फिर इस प्रकार के भेद प्रभेद की कल्पना नहीं है वो सब कल्पातीत कहलाते हैं। उसके नीचे नीचे कल्पवासी देव हैं। ब्रह्म लोकाले अलौकांत का सारस्वत आदित्य वन गर्दोय दुषि बाधा व्याबाधारिष्टाश्च। 5वां स्वर्ग है जिसका नाम ब्रह्म स्वर्ग है। उस 5वें स्वर्ग के सीमा भाग में अंतिम भाग में वहां पर कॉलोनी बनी हुई है किसके लिए लोकांतिक देवों के रहने के लिए। वहां पर लोकांतिक देव रहते हैं जिनको कि देवर्षि कहते हैं। देवों के वो ऋषि होते हैं। वहां पर देवियां नहीं होती हैं वो सब लोकांतिक देव प्रविचार से रहित होते हैं बाल ब्रह्मचारी होते हैं एक भवावतारी हैं। सिर्फ मनुष्य लोक में उनके आने का काम कब निश्चित है जब तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याण होता है तो उसकी प्रशंसा करने के लिए जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो आपने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया इस बात का समर्थन करने के लिए वो आते हैं वरना तो 12 भावनाओं के चिंतन में वहीं पर लीन रहते हैं। इस प्रकार लोकांतिक देवों की चर्चा है। लोकांतिक देव के नाम 8 कहे गए सारस्वत आदित्य वहनी अरुण गर्गतो तुषित अव्याबाध और अरिष्ट ये 8 जो है लोकांतिक देवों के नाम हैं। विजयादिषु द्विचर्मा विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च ये जो 5 अनुत्तर विमान हैं इनमें जो जीव सर्वार सिद्धि को छोड़ करके और 4 विजयादिक में उत्पन्न होते हैं वे 2 भवावतारी हैं द्विचरम हैं अर्थात वहां पर जो जीव हैं वे आकर के मनुष्य होंगे और मनुष्य होकर के पुनः विजयादिक में जाकर के पुनः मनुष्य होकर के और मोक्ष को नियम से जाएंगे फिर 2 बार मनुष्य धारण वेश धारण कर लिया 3री बार तो कोई गुंजाइश नहीं उनका तो मोक्ष हो ही जाएगा इतनी उनके अंदर विशुद्धि होती। इसलिए यहां पर विजयादिक में देव द्विचरम होते हैं। मनुष्य के 2 भाव लेना भैया द्विचरम से अर्थ यहां पर औपादिक मनुष्यभ्या शेषास्त्रीय गुना नया उपपाद जन्म वाले और जो मनुष्य हैं यहां कर्म भूमि और भोग भूमि के उनके अलावा जितने भी संसारी जीव हैं वे सब तिर्यंच कहलाते हैं। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक तो सब तिर्यंच ही हैं। इस तरह अपन कह सकते हैं भाई तिर्यंचों का साम्राज्य संसार में ज्यादा है, बाकी उपाजन वाले मनुष्य और नार की, वो देव और नार की और मनुष्य, इसके अलावा सभी तिर्यंच हैं। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषा नाम सागरूपम त्रिपल्युपमार्दहीन मिता। जो अपन ने विभिन्न प्रकार के भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक देव कहे हैं, सो उन सब की आयु उत्कृष्ट और जघन्य कितनी होती है इसकी भी चर्चा आचार्य भगवंत कर रहे हैं कि असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और दीप कुमार जो भवनवासी देव हैं और शेष जो भवनवासी देव हैं वो क्रम क्रम से कितनी उनकी उत्कृष्ट आयु होती है, तो एक सागर, तीन सागर, ढाई सागर, दो सागर और तीन पल्ल की आयु ही उनकी अधिकतम हुआ करती है। सौधर्म ईशान यो सागरूप में अधिके, सौधर्म ईशान में कुछ ज्यादा दो सागर आयु होती है, क्योंकि जो घात आयु है उनके लिए कुछ अधिक दो सागर से ज्यादा आयु मिलती है, इसलिए दो सागर कुछ अधिक इस प्रकार उत्कृष्ट आयु बनाई। सानत कुमार और माहेंद्र के लिए सानत कुमार माहेंद्र यो सप्त, सानत कुमार और माहेंद्र जो देव हैं उनके लिए कुछ अधिक सात सागर आयु लिखी है। त्रिशप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश विरदिकानी तु, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में तो दस सागर, लांतौकापिष्ट में चौदह सागर, शुक्र महाशुक्र में सोलह सागर और सतार सहस्रार अठारह सागर, इस प्रकार से तीन सात नौ दस और तेरह ये सब जोड़ते चले जाते हैं तो निकाल आते। हमने पहले इसे जोड़ के इमें लिख ले सो बता रहे जाने समझियो कि हमें सब याद है जी, हाँ जी भी पढ़ के बता रहे आप। इतना छह उपशम अपन को नहीं है, बहुत अभ्यास करे कोई तो उसको ये सब चीजें याद रह सकती हैं, अपन को इसका अभ्यास करना चाहिए। आरण और प्राणत जो है उनकी आयु बीस सागर की होती है। आरणाच्युता दूर्धमयी केन नवसु ग्रैवीय केसु विजयादिशु सर्वार सिद्ध उच, जो आरण और अच्युत जाति के देव हैं उनकी तो आयु उत्कृष्ट 22 सागर होती है, और पहले तीन ग्रेवेक में एक एक बढ़ गई 22 से तो 23 हो गई, और फिर उसके ऊपर के जो मध्यम ग्रेवेक है उनमें एक बड़ा दो सो 24 सागर हो गई, और तीसरे ऊर्ध ग्रेवेक में भी 25 सागर, इस प्रकार से नहीं पहले जो तीन ग्रेवेक हैं वो माने जिसको अपन कहें अधो ग्रेवेक उन सब में रहेगी 23, 24 और 25, और फिर उसके बाद के जो तीन ग्रेवियक हैं उनमें 26, 27, 28, और फिर उसके बाद अधो ग्रेवियक जो तीन हैं उनमें 29, 30 और 31, और नौ अनुदिश विमानों में तो सब 32 सागर की आयु है, और पांच अनुत्तरों में 33 सागर की आयु है, इस प्रकार से ये सबकी उत्कृष्ट आयु आचार्य भगवंतों ने कही है। अपरा पल्युतम मधिकम, पहले युगल में जगन आयु तो है एक पल कुछ अधिक, और बाकी जो उत्कृष्ट आयु है वही अगले अगले स्वर्ग में जगन आयु बनती चली जाती है आगे आगे की। इस प्रकार अपन एक उदाहरण ले लें कि सौधर्म ईशान में जगन आयु तो हो गई कुछ अधिक एक पल, और फिर सानत कुमार माहेंद्र में जगन आयु कितनी हो गई दो सागर, जो कि सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु है वही माहेंद्र और सानत कुमार में जगन आयु, इस प्रकार से सब में लगाते जाना। और सर्वार सिद्धि में जो उत्कृष्ट आयु है और जगन आयु है वो 33 सागर की है, वहां पर दोनों आयु में अंतर नहीं है। नारका नाम च द्वितीय दिशु 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, नरकों में पूर्व पूर्व की जो उत्कृष्ट आयु बताई है वो आगे आगे की भूमियों के लिए जघन आयु होती जाती, उसकी भी यहाँ आयु के प्रकरण में नरक की भी चर्चा कर ली, और पहली भूमि में जघन आयु 10,000 वर्ष की रहती, यानी नारकी को 10,000 वर्ष तो कम से कम नरक में गुजारना ही पड़ेंगे, और अधिकतम कितने गुजारे तो 33 सागर तक साथ में नरक में वो अपना समय व्यतीत करता है और दुख भोगता है। भवनेशु चा भवनवासी देवों की भी जो जघन्नायु है वो नारकी पहले नरक के बराबर ही है, 10,000 वर्ष है व्यंतरणाम चा, और ऐसा ही जघन्नायु 10,000 वर्ष व्यंतर देवों की भी है। परापल्ल्योपम मधिकम, उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक पल्ल प्रमाण है या पल्ल्योपम प्रमाण है। ज्योतिष का नाम चा, ज्योतिषी देवों में भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक पल्ल प्रमाण है। तदस्ट भागो परा, अर्थात जघन आयु स्थिति उत्कृष्ट आयु की 1/8 भाग होती है, इस प्रकार से आयु का वर्णन किया। लोकांत का नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, सब लोकांतिक देवों की आयु तो 8 सागर की है, उत्कृष्ट जघन का वेद यहाँ पर नहीं होता। इस प्रकार से अपन ने चौथे अध्याय में जो देवगति है उसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करके पढ़ के और जीव तत्व के बारे में अपनी रुचि को और अधिक बढ़ा लिया कि हाँ देखो जीव तत्व जो कि मेरे लिए प्रयोजनभूत है। देखो तत्वार सूत्रपन पढ़ते हैं तो उसमें नाना प्रकार की चर्चाएं करते हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान क्या रखना चाहिए कि चर्चा कितना करो लेकिन मेरे लिए प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं। सो पहला दूसरा तीसरा चौथा अध्याय में यह वर्णन सब जीव तत्व के प्रति मेरी रुचि जागृत करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इतना विस्तार जीव तत्व का है और सब सर्वज्ञ भगवान को मालूम है, तो सर्वज्ञ भगवान कितने ज्ञानवान हैं। ऐसा सर्वज्ञ भगवान के प्रति जिनेन्द्र भगवान के प्रति अपने मन में श्रद्धा जागृत हो इसको पढ़ करके, भले ही कछु में आवे 4 में से 1 अध्याय में से, लेकिन ये चारों अध्याय में जो ज्ञान का वर्णन किया है वो तो केवल ज्ञानी के ही वश का है, मेरे तो समझ में भी नहीं आता है, अद्भुत है केवल ज्ञान। ऐसी अपने भीतर श्रद्धा जागृत हो गए तो 4 अध्याय पढ़ने को कछु विशेष अपन को लाभ रहेगा, जीव तत्व के प्रति और 7 तत्वों के प्रति अपने अंदर श्रद्धान उत्पन्न हो इस तत्वार सूत्र के वाचन से अध्ययन से। आचार्य विद्या सागर मुनि महाराज की जय। मिथ्या तम नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर दास देखो भानु शिव कानी है। अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काबू न सताए वे को भव्य और आनी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। तेरा शरण सुखा।